धवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं,
नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाणं। सयलिन्दविन्दवन्द्य मणिनन्द्य भवपौमवणसण्डम् ऐनन्दजिननाहम्
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो अंत में शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा है, यह हम 15वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 62 पर आ गए, 62। और अभी हमारा यहाँ जो उपक्रम अनुयोग द्वार चल रहा है, उपक्रम का अर्थ हमने देखा बंध के द्वितीय संयुक्त के पश्चात जो सत्ता में जो पड़ा है कर्म, उसमें क्या क्या बातें होती है, तो उसमें हमने बंधन उपक्रम देखा। और फिर अभी उदीर्णा देख रहे हैं। उदीर्णा में भी एक एक प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा, ये सारी बातें हमने मूल प्रकृतियों पर देखी, उसके स्वामित्व कौन है, उसका कितना काल है, अंतर वगैरह वगैरह सभी बातें देखी। अभी हमारी बात उत्तर प्रकृतियों की चल रही है। मनीषाबेन आपको थोड़ा कठिन तो लगेगा, क्यों? क्योंकि मूल प्रकृतियों में कौन सी प्रकृति कहाँ तक उदय रूप है ये तो हमें तो आसान है, परंतु उत्तर प्रकृतियों के बारे में कौन सी प्रकृतियों का कहाँ उदय रुकता है, जिसको उदय की विच्छित्ति कहते हैं, यानी कहाँ उदय है और कहाँ नहीं है, क्योंकि उदीर्णा उसी की होगी जिसका उदय होता है। अभी इसके सारे टेबल इनके पास भी कुछ चार्ट्स है कि कौन सी उदय की विच्छित्ति होती है, थोड़ा आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, या उसका वो चार्ट सामने रखेंगे, दिया है ना, तो जहाँ उदय की विच्छित्ति नहीं, जैसे पहले गुण स्थान में बोलो, अभी बिना देखे मिथ्या तो है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त है और आतप है, एक इंद्रिय की ऑप्शनल है, कोई कहते पहले में, कोई कहते दूसरे में, उसमें बोलो। देखो पहले पांच बोलो, जो नियम दोनों ही मानते हैं, दो ही मतों में, मिथ्यात्व, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त और आतप, और फिर जो दूसरे में बोलो, अभी बाकी जो रिमेनिंग है वो अनंतानुबंधी की चार, एक इंद्रिय स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय, ये हो गए ना सर?
टोटल
नौ और पांच,
सोलह।
या पहले अगर एक इंद्रिय स्थावर और ये तीन इधर यहाँ ले लेंगे तो वहाँ चार और यहाँ बाकी 10, यानी दो दो प्रकार से कथन आता है। पहले गुणस्थान में अगर पांच की उदय विच्छित्ति देखेंगे तो वहाँ 9 की होगी दूसरे में, अगर पहले गुणस्थान में हम 10 की मानेंगे तो वहाँ 4 की होगी, दोनों मिलकर 14 की हो जाती है।
पहले सूक्ष्म साधारण आतप
अपर्याप्त और आतप, हाँ अभी अभी खोलो मत, खोलो मत, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ मुझे भी मालूम नहीं, अभी याद नहीं है, पर जहाँ कहीं हम अटकते हैं तो हम निकाल खोल के निकालेंगे। दूसरे तीसरे गुणस्थान में तो आसान है ना, सम्यक मिथ्यात्व का उदय कहाँ है, वह अकेला वही है और वही उसका उदय भी रुक जाता है। अब चौथे गुणस्थान की बात हमने कल देखी थी, आपको याद होगा। हाँ वहाँ की कषाय बता देना पहले मेल, तो चार तो वो हो जाएंगे। अब देखो हमें ऐसा सोचना है कि देवों में और नारकियों में चार ही गुणस्थान है, तो उनमें जो प्रकृतियां उदय रूप होते वो आगे नहीं होगी। हाँ पहले गति लेना, यानी देवगति देवगति देवगति, अभी अनुपुरी सभी चार हम बाद में, उसमें आ जाता है, यानी देवगति देवगति अनुकूल या देवगति नरक गति, फिर उनके वैकरिक शरीर अंगोपांग और देवायु नरकायु, और फिर सभी चारों अनुपूर्वी ले लेना यहाँ पर, क्योंकि विग्रह गति में चौथा गुण स्थान होगा, उससे आगे नहीं होगे, तो देवानुपूर्वी भी, नारकानुपूर्वी, तीरंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, यहाँ तक तो 14 हो गए। अब तीन जो है, दुर्भग अनादे और अयशस कीर्ति, अभी सुनो केवल, ये तो चौथे की बात हो गई। चौथे में 17 की उदय की विच्छेति है, पांचवे में हाँ यानी वहां का कषाय प्रत्यक्ष अनुचार। अभी तीर्यंचो में पांचवा गुणस्थान हो सकता है, तो तीर्यंच गति अनुपूर्वी नहीं कहना यहाँ पर, तीर्यंच गति, फिर उसमें और क्या होता है, तीर्यंच आयु, फिर नीच गोत्र और उद्योत, जो तीर्यंचो में उदय रूप हो सकता है उसको यहाँ पर होगा ना उनको, तो ये यहाँ की आठ है पांचवे गुणस्थान की। छठे गुणस्थान में हमने कल निद्रा संबंधी देखी थी, आपको देखा था वो अ वाली जो बातें हैं ना, वो बंद की विच्छेद उदय में तीन निद्रा लेना है और सहनन सातवें तक लेना है। यहाँ आहारक और आहारक अंगोपा, छठे में उदय है, बाद में उसका उदय है ही नहीं कहीं पर, आहारक आहारक अंगोपांग और तीन निद्रा, ध्यान वृद्धि वाली तीन निद्रा। हाँ तो सातवें गुणस्थान में एक सम्यक प्रकृति, देवायु वाली वो बंध में है सम्यक प्रकृति और तीन सहनन है, हम बाद में देखेंगे कुछ रह गया है क्या नहीं। आठवें में हमने देखे थे छह नौकशाएं, हाँ वो छह नौकश है। अब नौवे में उदय रूप की बात है, तीन वेद और फिर संज्वलन के तीन, क्रोध मान और माया, लोभ तो है दसवें में, तीन संज्वलन तीन वेद, फिर दसवें में जो उदय रूप है जो आगे नहीं है, संज्वलन का लोभ एक ही, उसमें दूसरा किसी का उदय नहीं रुकता वहां पर। अब ग्यारहवें गुणस्थान में दो सहनन जो वहां तक जाते हैं, और हाँ वज्र नाराज और नाराज नाराज। अब बारहवें में अभी देखो ज्ञानावरण, क्योंकि वहां तो क्षय होने वाला है ना, उसका उदय वहीं पर है। दो निद्रा, वो जो निद्रा और प्रचला उपांत समय में चले जाते, और फिर पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अंतराय, यहां तक हो गई बात, ये बारहवें की हो गई। अभी तेरहवे में उदय रूप, उसमें जो दो मत है ना, एक जीव की अपेक्षा और अनेक जीवों की अपेक्षा, यानी एक वेदनीय की यहाँ उदय है वहां पर, हम कंटिन्यूस लेंगे। अभी ये किसी की बात है, तेरहवे की घाती है क्या वहां पर कोई नहीं, तो अभी अघाती में से सोचना है, तो वेदनीय में किसी एक का उदय है। एक एक कम, हम चार अघाती है ना, हमको सोचना कैसे है। हाँ हाँ नाम कर्म का देखो, वेदनीय लिए मनुष्यायु है, उसका भी उदय है, उच्च गोत्र का उदय है, अभी ये तो हो गई उसमें से, अभी नाम कर्म की है, तो नाम कर्म की उदय रूप बोलो, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, छहो संस्थान, छह संस्थान ले लिए, वज्र ऋषभ नाराज सहनन लिए, अब वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर अस्थिर दोनों होते हैं, शुभ अशुभ दोनों होते हैं, सुभग सुस्वर दुस्वर दोनों, आदेय यशस कीर्ति, किसी को तीर्थंकर भी होगा, निर्माण तो है ही, अभी कुछ रह गया तो देखो। हाँ 29 होते हैं वहाँ पर, जरा 13वीं की बात पढ़ लो, एक वेदनीय सहन, हाँ हमें ऐसा हमने किया क्या, सहनन वज्रश नाराज, वो माइक ले लो, यानी याद कैसे किया था हमने वज्र शुभ नारा सहनन निर्माण
स्थिर अस्थिर
फिर स्थिर अस्थिर
शुभ
शुभ अशुभ
सुस्वर दुस्वर
हमने वो हमारी विहाय गति रहेगी क्या
सुस्वर दुस्वर
दोनों विहाय गति है
औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग
शरीर अंगोपांग
तेजस कारमान
तेजस कारमान भी रह गया था छह संस्थान
वो लाइन सब लिखा है मैंने छह संस्थान स्पर्श रस वर्ण गंध अग्र लघु उपकार प्रकाश उच्छ्वास और प्रत्येक
सहनन पहले ही सहनन बता दिया था
और प्रत्येक शरीर
प्रत्येक शरीर रह गया
था
प्रत्येक शरीर रह गया था
प्रशस्त प्रशस्त व्याय गति और प्रत्येक शरीर दो रह गए तीन रह गए
नहीं पहले जो हमने लिस्ट पढ़ी थी तेजस कारमान की भी बात नहीं पढ़ी थी हमने यानी इस तरह से हमको लेना है देखो ध्रुवोदय तो है ही है ना वहाँ पर तो ध्रुवोदय में वहाँ जो का सहनन ऐड करना है इस तरह से हमको सोचना है अभी हमने ये गिनाई उदय की विच्छित्ति कहाँ है अभी चौदहवे में तो उदय भी है किसका है मनुष्य गति का भी ये जो अभी हमने देखो उच्च गति तेरहवे में उदय की विच्छित्ति हुई हाँ 29-30 ऐसे दोनों कहते हैं क्योंकि किसी को साता लेना किसी को असाता लेना इस तरह से और तीर्थंकर पकड़कर हाँ और चौदहवे में उदय रूप कौन सी है एक दो जो हमने देखी थी एक वेदनीय है जो एक का जो तेरहवे में किसी का चौदहवे में वो उदय रूप होगी और फिर आयु और गोत्र तो लेना यानी तीन आघाती तो लेगी नाम कर्म में से कौन सी है मनुष्य गति है पंचेंद्रिय जाति है अभी वो शरीर नाम कर्म वगैरह कुछ नहीं रहा यहाँ पर चौदहवे में तेरहवे में उदय की विच्छित्ति में नहीं लिया था कौन कौन सी उदय रूप है इसे हमने गिनाई थी फिर उसमें से उदय की विच्छित्ति अगर लेना है नहीं ऐसा नहीं कहा उदय रूप कौन सी है अभी अगर लिखिए तो फिर जो फिर से विच्छित्ति की लिखनी है बात नहीं 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 उदय रूप कौन सी है वैसे भी देखी पहले तो विच्छित्ति के देखी सारी तेरहवे में केवल जरा चेंज करो तेरहवे में तेरहवे की विच्छित्ति जो है वज्रषभ नारास सहनन निर्माण फिर तीर्थंकर बाद में ले सकते हैं यहाँ पर भी ले सकते हैं तो स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ फिर सुस्वर दुस्वर विहाय गति में दोनों फिर से पहले वज्रषभ नारास सहनन निर्माण एक्चुअली हम जो हम याद किया था तो तीर्थंकर को यहाँ लिया था और फिर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुस्वर और दो विहाय गति यहाँ तो हो गया अभी तेजस कारमान फिर वर्णादि चार हो गए औदारिक शरीर अंग औदारिक शरीर अंगोपांग तेजस कारमान छह संस्थान सहनन पहले नंबर पर लिया था एक नंबर पर लिया था वज्रषभ नारास इसीलिए जो सिंगल वो है वहाँ ही ले लिया था हाँ वर्णादि चार यानी अगुरु लघु के चार और प्रत्येक शरीर देखो स्थिरादि छह नहीं पहले हमने केवल उदय कौन कौन सा है वो गिने थे विच्छित्ति नहीं बोली थी वहां विच्छित्ति केवल लेना है मेरे को देखो हमने जो क्या क्या वहां उदय रूप कौन सी होती इसलिए हमने आघाती को गिनाया था कि वेदनीय है आयु है इस तरह विच्छित्ति तो नहीं थी वो विच्छित्ति नहीं हम गिन रहे थे वो उदय रूप प्रकृतियां कौन सी उसको गिन रहे थे उस 29-30 इसलिए कहते कि एक जीव की अपेक्षा और अनेक जीवों की अपेक्षा इस तरह से वैज्ञानियों को दोनों को भी ले सकते किसी के यहाँ हुए किसी के बाद में हुए वेदनीय किसी को साता का उदय किसी का असता है साता का रुक जाता है, असाता का चालू रहता है, इस तरह से। इसलिए दोनों गिन सकते हैं, जैसे हमने सुस्वर दुस्वर दोनों लिए तो एक जीव को दोनों नहीं हो गए ना, जिसको जो होगा उसकी बात, इस तरह से उसको गिनना है। फिर से मैं तेरहवीं की विदय विच्छेद देखती, देखो वज्रषभ नाराज सहन निर्माण और तीर्थंकर, ये सिंगल तीन और प्रकृतियां पहले बता देना। फिर सिर सिर शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर और दो विहाय गति, यहाँ तक हो गए। औदारिक शरीर अंगों, एक्चुअली तेजस तेजस कारमान को पहले गिनना चाहिए, तेजस कारमान आपने उल्टा लिखा है। अरे तीर्थंकर का चौदह में, तीर्थंकर को नहीं गिनना, सॉरी मैं मेरी भूल हो गई, तीर्थंकर को यहाँ नहीं गिनना, सॉरी। चौदहवें में उसका उदय है। फिर से वज्रषभ नाराज सहनन निर्माण, सिर सिर शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर और प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, तेजस और कारमान, औदारिक शरीर अंगोपांग, फिर छह संस्थान, वर्ण रस गंध स्पर्श, अभी उसके विचार, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास और प्रत्येक शरीर। एक वेदिनी गिनना रह गया था, बाकी तो किसी के उदय विच्छेदी नहीं होती, इसलिए 24 और ये 36 हो गई, 30 हमने गिनी, 29-30 इस तरह से होती, 30 हो जाती। अभी 14वें में जो उदय रूप है, एक तो उदय रूप नहीं है परंतु वह सत्ता में है, कौन सी, जो उदय रूप नहीं है पर सत्ता में है, सत्ता में तो बाकी भी है जो उदय की उदय विच्छेदी हुई है, परंतु वो अनुपूर्वी जो है ना, उसका उदय तो नहीं होने वाला परंतु सत्ता में पड़ी है, यानी उसकी उदय की विच्छेदी भी हमने उदय की विच्छेदी वहां कही थी, चौथे में ली थी कि उसके बाद उदय कभी नहीं होगा, परंतु सत्ता में पड़ी है वो, ये उदय की बात है 14वें में। अभी यहाँ उदय की विच्छित्ति बताना है। हाँ, अभी वेदनीय जो रिमेनिंग है वो मनुष्यायु है, उच्च गोत्र है, क्योंकि अभी तो ये सभी नष्ट होने वाले हैं। हाँ, अभी ये नाम कर्म की, हाँ मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति, अब उसमें बाकी संस्थान वगैरह सब रुक गए थे, त्रस रह रहे, त्रस बादर और पर्याप्त, शरीर को तो हमने 13वें में उदय विच्छेद हुई थी। हाँ, सुभग आदेय यशस कीर्ति, और किसी को तीर्थंकर होगा तो होगा, यानी नाम कर्म के 8 या 9 ऐसे गिनते हम ऊपर, और किसकी, मैं नाम कर्म की कह रही हूँ, मैंने कहा नाम कर्म की 8 या 9 है, और बाकी एक वेदनीय एक आयु और एक गोत्र लिया, सत्ता की बात अलग है, अभी उसकी बात अभी नहीं करेंगे, नहीं अभी तो उदय की बात करने केवल, हाँ क्योंकि हमें उदयना से मतलब है, सत्ता की बाद में करेंगे। देखो अभी हम पेज नंबर 62 क्या वेदनीय, बारह हो गए, एक ही वेदनी यहाँ गिनना है। देखो होते किसी को साता किसी को असाता,
दो वेदनी लेना।
देखो एक को अगर हम अगर एक को हम वहाँ गिनते तो दूसरे को यहाँ गिनना है,
तो भी बारह ही हुआ,
बराबर है,
तीर्थंकर पकड़ के भी बारह हुआ,
बराबर है,
बराबर है ना,
बराबर है। अभी पहले लिया ना, हाँ अब देखो अभी यहाँ से पढ़ेंगे, अपनी ये जो उत्तर प्रकृतियों की बात है ना, वो कहाँ किसकी होती है उसकी बात, ये पेज नंबर 54 से बात शुरू हुई थी। ज्ञानावरणी की उदीर्णा कब तक चलेगी, उदय कहाँ तक है, तो 12वें तक है, तो एक आवली पहले उदीर्णा रुक जाएगी, वो तो समझ में आई। अंतराय की भी ऐसी पोजीशन है, और दर्शनावरण में जो चार है वो भी ऐसा ही है, और निद्रा प्रचला की भी उदीर्णा वहां तक है, एक आवली पहले तक। वो तो उदय और सत्व एक समय पहले रुक जाता है, उसकी बात नहीं, हमें उदीर्णा से हमें कंसर्न है। तो हमने ज्ञानावरण देखा, दर्शनावरण देखा, अंतराय देखा, वेदनीय बता दो यहाँ पर। हमने देखा था ना छठे के ऊपर उसका उदीर्णा नहीं है, उदय तो हमने देखा 13वें 14वें तक है, उदीर्णा यहाँ तक है, कहाँ तक, छठे गुणस्थान तक, दोनों की, साता की भी और असात। अभी हमें कंसर्न उत्तर प्रकृतियों से, यही हम उदीर्णा का ही तो, हाँ वही तो देख रहे, उदीर्णा की बात है, उदीर्णा की विच्छित। देखो उदीर्णा की विच्छित्ति में डिफरेंस कहाँ है, एक तो वेदनीय में है, क्योंकि छठे तक ही उसकी उदीर्णा है, उदय तो 14वें तक है। और आयु में भी जो जिसकी आयु है तो उसके एक आवली पहले उदीर्णा रुक जाती है। यहां तक समझ में आई बात, आयु का भी हमने देख लिया। प्रत्येक जो जिस भव का जो है, नारकी है तो देव है, तो अपनी अपनी आयु के एक आवली यानी मरण के एक आवली पूर्व में उदीर्णा रुक जाती है। मनुष्य में ऐसा लेना है कि छठे गुणस्थान के बाद उदीर्णा नहीं होती आयु की, तो उसमें छठे गुणस्थान तक होती है ऐसा कहेंगे हम, और उसमें भी वो मरण के पहले वाले कंडीशन तो लगेगी। हाँ, अगर उसके आयु शेष है तो छठे गुणस्थान के अंत समय तक वो उदीर्णा करेगा। यहां तक हो गई ना, ज्ञानावरण दर्शनावर अंतराय आयु भी हो गई, वेदिनी भी हो गई। अब मोहनीय की बात करें तो मोहनीय में देखो मिथ्यात्व का उदय किसका है, तो मिथ्या दृष्टि को है, उसकी उदीर्णा करने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। तो जो वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है वो मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय तक उसकी उदीर्णा भी करता है, क्योंकि वेदक सम्यक तो में पोजीशन क्या है, वो तीन यानी जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो तीन टुकड़े पड़े हैं वहां पर, और वहां मिथ्यात्व का उदय और बाकी दो का उपशयन कैसा, अप्रशस्त उपशम है। जब वो सम्यक तो प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व का उदय रुक जाएगा, अन्य सम्यक प्रकृति का चालू हो जाएगा, इसलिए उसको उदीर्ण होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता वहां तो पड़ी है। औपशमिक सम्यक तो प्रथमोपशम में क्या होता है कि बीच में अंतर तैयार होता है, और ऊपर के सारे परमाणु उपशमित है, वो नीचे नहीं आ सकते, शुरुआत में थोड़े थोड़े आते थे, बाद में वो तो उपशम जितना ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर से नीचे अंतर लांग कर आना बंद हो जाता है, फिर दो आवली बाकी रहे, दो आवली में से ऊपर के आवली के नीचे के आवली में आते रहते हैं। जब एक आवली प्रमाण शेष रहेंगे तब उसकी उदीर्णा भी रुक जाती है, प्रथम स्थिति में आवली शेष रहने पर, यह प्रथमोपशम के बारे में यह कंडीशन बताई। अभी सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा कहाँ होगी, तीसरे गुणस्थान में, वो तो अंत समय तक लेना। सम्यक प्रकृति की उदीर्णा कहाँ होगी, उदय कहाँ है, चौथे से 7वें तक। तो हमको उदीर्णा कहाँ है पूछा है, तो चौथे से लेकर 7वें तक, परंतु उसमें भी एक कंडीशन है। देखो जो क्षायिक होने जा रहा है तो वहां क्या होता है कि अंत में सम्यक प्रकृति रूप होते सारे निशे, और फिर उसमें जब आवली प्रमाण रहेगी कृतकृत्य वेदक होने पर एक एक निषेक उदय में आता रहता है। जब आवली से ज्यादा निषेक है तो ऊपर के निषेकों में से आवली में प्रवेश हो रहा है, उदय आवली में। अब आवली प्रमाण जब निषेक शेष रहे यानी विक्षायिक होने के लिए आवली बाकी है तो उसकी उदीर्णा रुक जाएगी सम्यक प्रकृति की। ऐसे ही द्वितीय ऑप्शन में भी देखा हमने, वहां पर भी द्वितीय उपशम में अंतर बना जाता है, ऊपर के उपशमित हो जाते हैं और नीचे जो उसका सम्यक प्रकृति का उदय चलता है, और वहां पर भी क्योंकि जब अंतर किया था तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में बड़ा अंतर किया था, यानी उसकी आवली मात्र नीचे शेष रखी थी और सम्यक प्रकृति के अंतर्मूर्त प्रमाण पहली स्थिति बनाई थी, इसलिए बाकी दो की यहां तो चले गए आवली में, अब ये अंतर्मुहूर्त घटते घटते आवली प्रमाण शेष रह जाएगा, तब उसकी उदीर्णा रुकेगी, ये उसका अर्थ है। अब ये तो हो गए दर्शन मोहनी की बात। चारित्र मोहनी में हमने देखा था जो जहां का जहां उसकी उदय विच्छित्ति है वहां उसके उदीर्णा भी वहां तक होगी। उसका उदीरक कौन है? तो कहेंगे पहले से चौथे तक। अप्रत्याख्यानावरण का कहां से कहां तक? पहले से चौथे तक। प्रत्याख्यानावरण का पहले से पांचवे, अकेले पांच, भले उदय की विच्छित्ति वहां हुई परंतु उदय और उदीर्णा कहां है? पहले से लेकर पांचवे तक, इस तरह से सोचना है। फिर हमने देखा था जिसकी उपशमना होती है क्षय हो जाता है, नपुसक वेद की कहां तक है? तो नवे के पहले भाग तक, इस तरह से। यानी उसमें भी जो हमने देखा था नवे में भी अंतर किया जाता है चारित्र मोहनी में। तो जिसका उदय है उसके अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति बनाई जाती है प्रथम स्थिति, वो घटते घटते आवली प्रमाण हो जाएगी तो उसकी उदीर्णा रुकेगी, ये उसका अर्थ है। तीनों वेदों के बारे में यही बात है। अब संज्वलन, क्रोध, मान और माया, वो तो नवे में, जब तक बंध है तब तक उसकी उदीर्णा होगी, क्योंकि बंध रुकता है तो आवली प्रमाण निषेक शेष रहते हैं जो उसको उच्चिष्टावली कहते हैं, पर उसका उदय नहीं होता है, वो अन्य रूप से होकर उपशमित या क्षपणा जो कुछ है हो जाती है, ये बात हो गई। संज्वलन लोभ जिसको कहेंगे वो दसवें में, और फिर
बोलेंगे हम एक से दस तक,
हाँ एक से दस तक ऐसा ही कहेंगे। हाँ, यानी हर में हर एक में मिथ्यात्व से, मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर ऐसा ही कहना पड़ेगा। और जो हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा वगैरह जो है वो तो पहले गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान तक, अंतिम समय तक, क्योंकि सत्ता में पड़े हैं, अंतिम समय तक उसकी उदीर्णा होगी, वहां वो आवली वाली कंडीशन नहीं लगाना। और वो देवों में और नारकियों में देखा, देवों में हास्य रति का और साता वेदनी का उदय अंतर, पहला अंतर्मूर्त, और वहां तो वो काल में, हमने हम यहाँ उदीरक कौन है उसकी बात करें, काल की बात तक आए थे हम, अभी हम फिर दोबारा रिवीजन कर रहे सर। हाँ, असाता, आरती और शोक का उदय पहले अंतर्मूर्त में हो गए। अभी आयु की हमने देखी थी, नारकायु की उदीरणा हाँ मरण के एक, यानी सब में होगा, उसमें कोई गुणस्थान की तो बात नहीं है, जो जिस गुणस्थान में होगा, क्योंकि आयु तो पहले समय से लेकर अंतिम समय तक उदय है, पर आवली पहले उसका उदीर्णा रुक जाती है। मनुष्यों में तो हमने छठे गुणस्थान के बाद देखी थी, अब हमको नाम कर्म की बात देखेंगे। अब जैसे आयु में आवली पहले रुक जाता है उदीर्णा, आवली एक मरण के आवली पहले उदीर्णा रुक जाती है आयु में, ऐसे गति में रुकती है क्या? नरक गति में रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी, नहीं, क्योंकि पहले समय से लेकर अंतिम समय तक नरक गति का उदय होगा और हमारा मनुष्य गति का उदय है, तो अंतिम समय तक होगा कि नहीं होगा? केवल मनुष्यों में मनुष्य गति का जो उदीर्णा जो है वो तो उदीर्णा तेरवे में रुक जाएगी, तेरवे के अंत समय में, उसका उदय चौदहवे तक है, पर उदीर्णा सभी की उदीर्णा जो जिसका जो चल रही थी वो तेरवे के आगे किसी की उदीर्णा होती ही नहीं, चौदहवे में किसी प्रकृति की उदीर्णा नहीं है। फिर जाति नाम कर्म में भी ऐसा ही लेना, बहु के पहले समय से अंतिम समय तक। अब पंचेंद्रिय जाति में कैसे कहेंगे? तेरवे के अंत समय तक, क्योंकि अयोगी में कोई किसी की उदीर्णा नहीं होती। अब जो शरीर नाम कर्म है, औदारिक हो, वैकरिक हो, आहारिक हो, वो शरीर के रचना करने वाला निर्वर्तक कहा था, वो उसका उसकी उदीर्णा करता है। अभी कहां तक होता है, जैसे वज्र ऋषभ नारा सहन के कहां तक हो गए? तेरवे के अंत समय तक होगा। औदारिक शरीर अंगोपांग का उसके अंत समेत है, इस तरह से हमको सोचना है। वैक्रेक का कहाँ तक होगा? वो चौथे गुण स्थान यानी उसके हाँ देव और नारकियों के वहां तो अंत समय तक होगा। अभी जो सारे प्रायोग्यानुपूर्वी है, विग्रह गति में जहाँ उदय है वहां ही उसकी उदीर्ण होगी। तो देखो तो सूक्ष्म ये तिर्यंचों में तीन समय तक लगातार हो सकती है। हाँ बाकी तो
जब आरक शरीर वाला जीव आरक शरीर छोड़ के छठे गुण स्थान में आरक शरीर से वापस जब भी औदारिक शरीर में लौटता है तभी क्या पर्याप्ति वापस? क्योंकि कल मैंने ऐसा पढ़ा कि आरक शरीर की से जब भी जीव औदारिक शरीर में एंटर करता है तभी बाकी की तीन पर्याप्ति पूरी करता है।
कहाँ पढ़ा? आहार के बारे में
नहीं, पर्याप्ति के बारे में, इसीलिए मेरे को डाउट आया। तुमने
आहार शरीर की पर्याप्तियाँ उसने की थी?
नहीं, वो तो पहले कर दी।
और औदारिक शरीर की पर्याप्तियाँ तो उसने विगर्भ में आने पर ही की थी।
तो मैं कुछ गलत समझा? कल मैं कर्मकांड पढ़ रहा था ना, तो मेरे को इससे समझ।
आपने आहार के बारे में पढ़ा था का केवली के बारे में पढ़ा?
नहीं नहीं नहीं, मैंने आहार शरीर से वापस लौटते समय
समुद्रघाट से लौटते समय फिर दोबारा पर्याप्तियाँ होती।
हाँ समुद्र घाट तो वहाँ पे वो भी लिखा है, पर औदारिक शरीर के वापस सभी पर्याप्त
मुझे पढ़ने में नहीं आया है। आप कल फिर पढ़ के मुझे पेज नंबर बता देना। उनका ये कहना है कि आहार शरीर बनाए और मूल शरीर में प्रवेश किया तो फिर वहाँ दोबारा पर्याप्तियाँ चालू हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। नहीं हमने कभी पढ़ने में नहीं आया, वो पर्याप्ति तो ऑलरेडी पूर्ण हो गई है। हाँ केवली समुद्घात में जो है, क्योंकि अगर पर्याप्तियां नहीं पूरी होते तो मिश्र का योग कहना पड़ेगा वहां पर। औदारिक मिश्र हो जाता है क्या फिर, जैसे आहारक मिश्र हुआ था? गलत कुछ आपने गलत कुछ हाँ वो समुद्घात की बात याद होगी आपको शायद। देखो हम तब तक आगे पढ़ते हैं, आपको मिला तो देख लेना। फिर जो जो अभी हमने उदय की विच्छित्ति देखी तेरवे में जिसकी होती है वगैरह वगैरह, तो उसकी उदीर्णा की विच्छित्ति भी वहां पर होगी। ये यानी विच्छित्ति वहां होती है, पर उदीर्णा करने वाले कौन है? तो पहले गुण स्थान से इस तरह से देखना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, जरा मुझे भी देना वहां से, आप उसमें पढ़ना माइक में।
पेज नंबर 584।
एक सेकंड, दूसरा भाग।
खाली यहाँ पे स्थान की चर्चा की है ना?
एक एक मिनट, आपका जरा प्रश्न फिर रिपीट करना, पेज नंबर देना मेरे को।
584।
हाँ
प्रमत से ये जो तीसरा पैराग्राफ है।
हाँ प्रमत संयत में,
प्रमत संयत में आहारक शरीर आहारक के शरीर मिश्र काल में 25 के स्थान का एक।
देखो इसका अर्थ देखते हैं, आहारक शरीर बनाना चालू किया तो पहले आहारक मिश्र ने मिश्र का योग होगा ना उसका, जैसे हमने देखा था कहीं से मरकर आता है विग्रह गति का नाम कर्म का उदय का वो 20-21 वाला स्थान था, फिर मिश्र शरीर काल कहते हैं, फिर शरीर पर्याप्ति काल कहते हैं, उच्छ्वास पर्याप्ति काल, इस तरह से हम देखा था। तो यहाँ शरीर मिश्र काल में 25 के स्थान का एक, क्योंकि यहाँ सहनन नहीं है, बाकी हमने देखा था ना वो तो हमने जो विग्रह गति में 21 देखे थे उसमें अनुपूर्वी छोड़ो तो 20 रही। हाँ तो उसमें सहनन बिना 5 प्रकृतियां मिला दी, तो ये 25 का शरीर पर्याप्ति काल में 27 के स्थान का एक, 25 में दो कौन सी मिलाई अभी आप बोलिए अश्विन भाई। अंगोपांग तो 25 में आ गई थी, 27 में कौन सी है? परघात और शुभ विषय प्रशस्त विहार गति। हाँ तो 27 हो गया। उच्छ्वास पर्याप्ति में 28 के स्थान का एक, 29 का हाँ हाँ तो यहाँ क्या प्रश्न है? भाषा पर्याप्ति काल तो मरण तक होता है, भाषा पर्याप्ति पूरी होते ही मरण तक भाषा पर्याप्ति काल ही होगा, तो छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है उनका नाम कर्म का कौन सा स्थान चल रहा है? भाषा पर्याप्ति का चल रहा है। किस संबंधी? औदारिक शरीर संबंधी भाषा पर्याप्ति का काल चल रहा है। बीच में आहारक शरीर बनाया तो उसमें अलग अलग पांच चार स्थान हो गए विग्रह कारमान काय तो उनके होता नहीं है, तो मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और आहारक संबंधी भाषा पर्याप्ति काल। आहारक शरीर के चार काल, भाषा पर्याप्ति का एक काल हमने औदारिक का बताया, आहार संबंधी चार ही। आहारिक के लिए पर्याप्ति या दूसरी बनी ना फिर दोबारा, तो उन्हें नाम कर्म का कौन सा किसका उदय है वो वेरिएशन हो जाता है वहाँ पर। अभी यहाँ कहाँ लिखा है देखो, अब ये समुद्घात में 585 पेज पर देखो नीचे का पैराग्राफ, संयोग केवली में समुद्घात रूप कारमान में 20 के स्थान का एक भंग। 20 इसलिए लिया आयनु पूर्वी नहीं है वहाँ पर उसके, इसलिए 20 है, सामान्य है। तीर्थंकर होगा तो तीर्थंकर के सहित 21 हो जाएगा, तीर्थंकर युक्त 21 के स्थान का एक भंग। औदारिक मिश्र में यानी कपाट समुद्घात में 26 के स्थान के, अभी 6 के अलग अलग भंग उसको नहीं लेना है, यानी वहाँ 26 का स्थान होगा। मूल शरीर में प्रवेश करते हुए अभी फिर दोबारा शरीर में प्रवेश किया तो शरीर पर्याप्ति काल में 28 के स्थान के 28 का स्थान हो जाएगा। देखो मिश्र में उनका 26 का स्थान हुआ था, फिर 26 से 28 का हो जाता है शरीर पर्याप्ति काल, यानी वो जैसे हमने देखो विहाय गति और वो सब शुरू होता है। और फिर उसके बाद उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 29 के स्थान होते हैं और भाषा पर्याप्ति में 30 का स्थान हो जाता है।
समुद्घात के पश्चात वो जब शरीर में प्रवेश करता है तभी सभी पर्याप्ति होती है, तो आहारक में नहीं होगी?
बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि औदारिक शरीर की पर्याप्तियां गर्भ में आते ही पूरी हुई थी।
नहीं तो तीर्थंकर को जो समुद्घात के पश्चात जो वो वापस जब भी शरीर में आता है तो उसके
बीच में मिश्र और कारमान का योग हुआ था, इसलिए फिर दोबारा वहाँ पर्याप्ति होती है। अकेले तीर्थंकर को नहीं, सामान्य केवली को भी। क्योंकि हमने देखा विग्रह गति में कारमान का योग था, उसके बाद मिश्र हुआ, उसके बाद वो शरीर पर्याप्ति हुई, तो वहां तो वो सभी पर्याप्तियां दोबारा हुई। वैसे ही समुद्घात के बाद फिर ये पर्याप्ति होती है यहाँ पर। ऐसे शरीर पर्याप्ति, उच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति होती। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी हमने उदीर्णा वगैरह की चर्चा की ना, कहाँ से कहाँ तक, तो पहले से कहाँ तक होते उसकी सब चर्चा की। अभी 61 पेज निकालना, एक युग की अपेक्षा काल बता रहे। अब ज्ञानावरण का उदीरक कौन है? अनादि से चल रही है और कब तक होगा? 12वें के कावली पूर्व तक। तो अभव्यों के तो अनादि अनंत ही होगा और बाकी जो श्रेणी चढ़ने वाले के अनादि शांत होगा। अब ऐसा ही वो चार दर्शनावरणीय तेजस कर्मण वगैरह जो हमने देखे थे, वो ध्रुवोदय वगैरह, उसमें भी ऐसा ही समझना। अब जिसका कभी कभी उदय हो सकता है और अंतर्मूल तक उदय होता है, फिर ऐसा है तो उनमें तो कैसा होगा? जैसे निद्रा है, एक समय के लिए उसके उदीर्णा हो गए फिर रुक गए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका जघन्य काल तो एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त हो। कोई भी निद्रा क्योंकि भले हम 4 घंटे सोए 10 घंटे सोए परंतु एक एक निद्रा का अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त ही गिनना है, तो उसका उदीर्णा का काल भी उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त होगा। यानी पांचों निद्राओं के बारे में उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त। अब साता वेदिनी में जघन्य से एक समय, क्योंकि वो एक समय में उसका उदय उदीर्णा बदल सकते, और उत्कृष्ट से किसी जीव को 6 मास, इसी वो सहस्रार के देव को होते। असाता में भी ऐसा है ना, जघन्य से एक समय और किसी जीव को उत्कृष्ट से 33 सागर में दोनों ओर अंतर्मूर्त बताना बढ़ाना। अब यहां से अपना विषय आज का चालू हो जाता है। अब देखो, हास्य व रति का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास है, जैसे अभी हमने साता काल देखा वैसा ही। यानी ये जो उदय है ना, परिवर्तन ये है, तो हास्य रति और रति शोक का उदय एक समय में भी पलट जावे, ये बात हो सकती है। अरति और शोक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्षता अंतर्मूर से अधिक 33 सागरोपम प्रमाण है, यानी वो असाता के समान ही उसके साथ इसको भी ले लेना। सभी को नहीं, किसी जीव को मैक्सिमम है, किसी के होता है, सबको नहीं होगा ये उत्कर्ष से बात। वैसे तो एक समय से अंतर्मूर्त वाली बात होगी सामान्य से सभी जीवों के लिए, पर कोई रेयर, कोई जिसको है मैक्सिमम पॉसिबल किसी को होता है, तो ये कहा जाता है कंटिन्यूस उस एक जीव के लिए इस तरह से इतना लंबा उसका काल हो सकता है। नहीं, ये तो 33 सागर के लिए 7वां नरक है और दोनों ओर और बढ़ाया। हाँ, और समय दृष्टि को तो इतना नहीं होगा अंतर्मूर्त में, उसका भी साता के भी, यानी किसी जीव को, क्योंकि वो पहले समय से अंतिम और आने के पहले और बाद में भी बढ़ाया, ये तो मिथ्या दृष्टि में ही घटित होगा नियम से। अब मिथ्यात्व के उदीर्णा काल की प्ररूपणा में 3 भंग है, उनमें जो सादी सपर्यवसित, सादी सपर्यवसित सादी शांत, उसका अर्थ एक बार सम्यक्त से मिथ्यात्व में आया है, उसकी उदीर्णा चालू हो गई और वापस वो सम्यक्त प्राप्त करेगा तो उदय उदीर्णा मिटेगी। उनमें जो सादी सपर्यवसित है उसका काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। हमने देखा था जो उसका मिथ्यात्व में रहने का सादी शांत काल इतना है, तो उसकी उदीर्णा भी उस समय चलेगी। सम्यक प्रकृति का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से आवली से कम 66 सागरोपम प्रमाण है, हमने देखा था। देखो, सम्यक प्रकृति की उदीर्णा होते तो हमने देखा वो तो वेदक सम्यक्त्व है, तो वेदक सम्यक्त्व में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, तो 66 सागर, और वो काल हम कृतकृत्य वेदक सहित वाला काल गिनते हैं, तभी पूरा 66 सागर होता है। अब उसमें अंतम निक्षय करने वाला है अंतिम आवली में, तो आवली प्रमाण ही निषेक बाकी रहेगी तो उदीर्णा कहां से होगी, इसलिए आवली कम 66 सागर लिया। सम्यक मिथ्यात्व का काल जघन्य से और उत्कर्ष से भी अंतर्मूर्त मात्र है, क्योंकि उस गुणस्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल यहां ले लेना है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन तीनों प्रकृतियों का जघन्य उदीर्णा काल समान है, यानी मिथ्यात्व में रहने का जघन्य काल, सम्यक मिथ्यात्व में रहने का जघन्य काल और वेदक सम्यक्त्व में रहने का जघन्य काल, तीनों समान बताए। अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त है और वो तीनों का समान बताया, ये कह रहे। सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट उदीर्णा काल उससे विशेष अधिक है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट काल लिया यहाँ पर। हमने देखा था कि मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में आया और ऐसा ही आगे चला गया चौथे में, तो उसका काल छोटा होता है, पर मिथ्यात्व में से तीसरे में आया फिर वापस मिथ्यात्व में जाना, या चौथे में से सम्यक मिथ्यात्व में आया और वापस चौथे में, क्योंकि वो आया है तो संकलेश से आया है, फिर दोबारा विशुद्धि करके चौथे में जावे तो कहते उसके लिए अधिक समय लगेगा। अब अनंतानुबंधी क्रोध का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है। देखो, हमने क्या देखा था, अनंतानुबंधी के उदीरक कौन है, पहले से लेकर पहले दूसरे दोनों, और अप्रत्याख्यानावरण के पहले से लेकर चार, तो उसका काल कितना होगा? क्योंकि देखो उदय पलटता है, क्रोध मान माया लोभ, अंतर्मूल से उस किसी का भी उदय नहीं है तो उसकी उदीरणा भी नहीं होगी, यही कह रहे हैं यहाँ पर। अनंतानुबंधी क्रोध का उदीरणा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है। एक समय इसलिए कहा कि वो एक समय में पलट सकता है उसका उदय, इसलिए एक समय लिया। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान माया और लोभ के भी उदीरणा काल का कथन करना चाहिए। जैसे अनंतानुबंधी कषायों के उदीरणा काल की प्ररूपना की गई है, वैसे ही अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यान चतुष्क के भी उदीरण काल की प्ररूपना करना चाहिए। देखो अप्रत्याख्यान इतना ही नहीं कहा, अप्रत्याख्यान का क्रोध अलग मान अलग, मान इसलिए वो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा। संज्वलन क्रोध का उदीरणा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है। इसी प्रकार संज्वलन मान माया और लोभ के उदीरणा काल का कथन करना चाहिए। भय और जुगुप्सा का उदीरणा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है। देखो शंकाकार पूछते हैं, भय और जुगुप्सा का उदीरणा काल एक समय कैसे है? समाधान, कारण कि अपूर्व करण के अंतिम समय में उनका एक समय के लिए वेदक होकर अनंतर समय में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त होने पर उक्त प्रकृतियों की उदीरणा की विच्छित्ति देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? भय और जुगुप्सा कैसी प्रकृतियां हैं, उदय के लिए क्या नियम है उनका? देखो भय और जुगुप्सा में उदय के अलग अलग नियम है, दोनों का भी उदय न हो ये बल सकता है। अकेले भय का उदय है जुगुप्सा का नहीं ये हो सकता है, अकेले जुगुप्सा का है भय का नहीं ये बन सकता है, और दोनों का ही उदय एट ए टाइम चल रहा है ये भी बांध बन सकती है, और ये जो पोजीशन है वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलट सकती है। यानी भय जुगुप्सा वो तो है तो ध्रुवबंदी, बंध में भी ध्रुवबंदी है, और उदय के लिए दोनों का ही उदय हो, दोनों का ही अनुदय हो, या उसमें से एक का उदय एक का अनुदय हो, ये इतने उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
जुगुप्सा का उदय खाली एक समय के लिए हम लोग आठवें के अंत में ही देख ले सकते हैं,
यही तो उन्होंने लिया।
नहीं, बाकी नीचे के कौन स्थान में उसका उदय होगा तो अंतर्मूर्त तक होगा ही।
क्या
क्योंकि हास्यरति के बारे में हमने देखा एक समय से अंतर्मूर्त है।
हाँ,
तो वहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन,
पर वहाँ ये पोजीशन नहीं थी, हास्यरति या अरति शोक था।
नहीं, पर वहाँ पे भी,
पर यहाँ तो उदय के चार कॉम्बिनेशन है, उदय है ही नहीं ऐसा भी लिया सकता।
नहीं, पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि नीचे के गुण स्थान में भेजे कुप्सा का उदय एक समय के लिए हो सकता है?
हो सकता है, परंतु यहाँ क्या लिया, देखो उदीरणा काल जगने से क्यों उत्कर्ष से अंतर्मूल प्रमाण है, तो उदीरणा काल एक समय कैसे है? हाँ, वहाँ शायद नहीं होता है, इसीलिए तो उन्होंने प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब उदय चालू हो गया तो अंतर्मूल तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा है ना, क्योंकि उदय नहीं था और चालू हो गया तो अंतर्मूर्त रहेगा। हाँ, यानी वो प्रतिपक्षी पर ऐसी प्रकृति नहीं है, हास्यरति के लिए उसके प्रतिपक्षी है, तो प्रतिपक्षी में वो ऐसा हो सकता है, जैसे साता असाता, उसमें भैजुगुप्सा में ऐसी पोजीशन नहीं है, उदय हो तो हो नहीं तो नहीं भी हो, ऐसा लगता है। और यहाँ कैसे उदय नहीं था, उदय शुरू हुआ तो उदय शुरू हुआ तो अंतर्मूत रहना चाहिए, तो कहते वो तो ऊपर हो गए नवे में विच्छित हो गई, यानी गुणस्थान पलटने से एक समय देखा गया, इस तरह से उसका अर्थ है। यानी इसी से सिद्ध होता है कि उसका एक अन्यत्र उसका एक समय वाला उदय नहीं रहेगा। अभी आगे का पैराग्राफ, नपुसक वेद का उदीरणा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। देखो नपुसक वेद में रहने का काल, मान लेते मनुष्य तिरंज में नपुसक वेद करके चला गया एकेंद्रिय में, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक एकेंद्रिय में रहा तो नपुसक वेदी ही रहा। हाँ, नपुसक वेद का उदीर्ण काल एक समय कैसे होगा? उपशम श्रेणी से उतरने लगा, चढ़ा था नपुसक वेद के उदय सहित, तो उतरते समय भी वो नपुसक वेद यानी सवेद भाग में आ गया, अपोगत वेद में से एक समय के लिए नपुसक वेदी हो गया। उदय है तो उदीर्णा भी है, और फिर देव में चला गया मरकर, तो वहां तो पुरुष वेदी हो गया। स्त्री वेद का जघन्य से एक समय वो भी ऐसा ही घटित होगा, एक समय पुरुष वेद में ऐसा होगा क्या? यहां मरेगा तो भी वहां पुरुष वेद में ही जन्मेगा, तो उसमें वो एक समय नहीं घटित होगा। देखो जो क्रोध मान माया लोभ में एक समय बताते वो तो प्रतिपक्ष अन्य कोई कर्म उदय है, अब यहां पर वेद में ऐसा नहीं है। जिसका जन्म से जो वेद है उसी का उदय हर समय चलेगा उसका, केवल श्रेणी में वो रुक जाता है वो बात है, अदरवाइज मरण के समय तक वही वेद उसका उदय होगा। अब स्त्री वेद का जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्योपम शतपृथक प्रमाण है। स्त्री वेद में रहने का यह उत्कृष्ट काल है, जैसे स्त्री वेद में रहने तिर्यंच नहीं हुआ, मनुष्य नहीं हुआ, देवी हुआ, ये तीन गतियों में स्त्री पर्याय जो है वहां तक वो घूमता रहा, तो कितने होते 100 पल्य पृथक्त्व, यानी पृथक्त्व 100 पल्य कैसा भी कहो। पुरुष वेद का उदीर्ण काल जघन्य से अंतर्मुख, देखो ये डिफरेंस है, नपुसक वेद और स्त्री वेद में एक समय है वो श्रेणी उतरते समय लिया, परंतु पुरुष वेद का अंतर्मुहूर्त लिया। हाँ, अंतर्मुहूर्त कैसे लेंगे? हाँ, पुरुष वेद किस में होता है? ऐसा भी दो प्रकार से लेते हैं, श्रेणी उतरते फिर चढ़ी या एक भव किया, तो अभी कौन सा
श्रेणी वाला
श्रेणी वाला जघन्य होगा। एक भव यानी कौन सा? पुरुष वेद किसको होता है? पंच इंद्रियों के होता है, संज्ञा असंज्ञा। अभी उसमें लब्धि अपर्याप्तों को तो नपुसक वेद होता है, तो ये पर्याप्तों के होगा। तो पर्याप्त है तो पर्याप्ति पूरी करके मर सकता है, नहीं इतना छोटा अंतर्मूर्त आयु बांध के आया जो जीव, एक ही पुरुष वेद का भव किया, अन्य स्त्री वेद में या नपुसक वेद में चला गया, ये हो सकता है, परंतु वो बड़ा होगा। दो श्रेणी के बीच का अंतर लेना। दो बार श्रेणी, पता नहीं उपशम के बाद क्षपक अगर चढ़ता है, क्योंकि क्षायिक के साथ उसने किया है तो क्षपक, नहीं नहीं वो पता नहीं दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ने, क्योंकि उसमें भी द्वितीय यानी द्वितीय उपशम या क्षायिक भी करके उसने श्रेणी चढ़ के उतरा है, तो दोबारा छठा सातवां करके फिर ऊपर चढ़ेगा, वो फिर भी वो काल छोटा है। यानी उनका ये कहने कि दोबारा उपशम श्रेणी चढ़नी है कि दोबारा दूसरी बार क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे तो जघन्य अंतर होगा, क्यों अधिक विशुद्धि चाहिए? अच्छा, अधिक विशुद्धि कम समय में भी कर सकता है, पता नहीं यानी उसके लिए कुछ ऐसा खास बताया नहीं है, दो बार इतना ही आता है। और उत्कर्ष से सागरोपम शतपृथक यानी पुरुष वेद में लगातार रहने का काल, ये समझ में भी वेद के बारे में। नारकायु का उदीर्ण काल, अभी नारकायु में एक ही भव होता है नरक का, तो जघन्य में छोटी आयु लेना और उत्कर्ष में बड़ी आयु लेना और एक अवली कम करना उसमें से। नारकायु का उदीर्ण काल जघन्य से एक अवली कम 10,000 वर्ष और उत्कर्ष से आवलिकम 33 सागरोपम, ये तो आसान है ना समझने में। इसी प्रकार देवायु के उदीर्ण काल का भी कथन करना चाहिए। मनुष्यायु का उदीर्ण काल, देखो अभी मनुष्यायु का कहने से छठे तक एक लेना है, अकेले आयु का नियम नहीं लेना, छठे के ऊपर रहा, सातवें में लास्ट टाइम जो सातवें में चढ़कर ऊपर ही चला गया उसका काल हम ले सकते हैं, माइनस करना उसमें। देखो मनुष्यायु का उदीर्ण काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवलिकम तीन पल्योपम प्रमाण। वो हमने देखा था छठे गुणस्थान में उसने उदीर्णा की एक समय के लिए और फिर उसका आवली में मरने वाला है, उसने मरण की आवली में मरणांत में प्रवेश कर दिया। छठे गुण स्थान में आने के बाद एक समय और आवली में उसका मरण है। एक उदीर्णा का काल बताना है, उसका मरण उसकी आयु कितनी बाकी थी जब छठे में आए, तो आवली प्लस एक समय आयु बाकी थी और उसने एक समय के लिए उदीर्णा की। अब आवली प्रमाण में प्रवेश हो गया, अभी उदीर्णा रुक गई। ये जघन्य से एक समय ने छठे में आने पर एक समय उदीर्णा की। हाँ, और उसके आवली में प्रवेश कर दिया मरण के पूर्व, आवली के बाद मरण। नहीं नहीं, आवली में प्रवेश किया मरण के पूर्व के आवली में प्रवेश किया तो उदीर्णा रुक गई। इसलिए उदीर्णा रुक गई। अब नरक गति नाम कर्म की उदीर्णा कितने काल होती है? सॉरी, ऊपर ऊपर तिर्यंच आयु का उदीर्णा काल जघन्य से आवलिकम क्षुद्रभव ग्रहण और उत्कर्ष से आवलिकम तीन पल्यपम। देखो नपुसक वेद में तो वेद का था ना, तो मरण के समय तक होता है, तो इसलिए पूरे असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अभी तिर्यंचों में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, पर हर बार प्रत्येक भव के अंतिम आवली में उदीर्णा रुक जाती है, इसलिए कंटिन्यूस उसको तिर्यंच में रहने का काल नहीं ले सकते। जैसे मनुष्यों में तीन पल्ले में आवली कम लिया, यहां पर भी ऐसा ही लेना है। गिना ना 33 सागर में एक आवली, ऊपर देखो पहले पैराग्राफ में, ये पहले पैराग्राफ में इसी पैराग्राफ की पहली लाइन, आवली कम 10,000 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम आवली कम 33 सागरों पर। देव में भी वैसा ही है और मनुष्य और तिर्यंचों में मैक्सिमम के लिए आवली कम तीन पल्ले। तिर्यंचों में जघन्य में भी वो क्षुद्र भोग को ही लिया, परंतु मनुष्य में एक स्पेशली, क्योंकि छठे सातवें का जो बात होती है, छठे में प्रवेश किया एक समय के लिए उदीर्णा की, अब जो उसका मरण का काल अब आवली प्रमाण शेष रहा था तो उदीर्णा रुक गई, इसलिए उसमें केवल एक समय की बात घटित हो जाती है। अब नरगति नाम कर्म की उदीर्णा कितने काल तक होती है? अब आयु में तो आवली के पहले रुकना है, अभी यहां तो कोई रुकावट नहीं है, जो भाव है तो पूरा का पूरा उस गति के नाम कर्म का तो उदय रहेगा, तो नरक गति में मिनिमम कितनी होगी उदीर्णा का काल? 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागर। तो नरक गति नाम कर्म की उदीर्णा कितने काल होती है? उसकी उदीर्णा जघन्य से 10,000 वर्ष और उत्कर्ष से 33 सागरोपम काल तक होती है। देवों में भी यही होगा। इसी प्रकार से देवगति के भी उदीर्णा काल का कथन करना चाहिए। तिर्यंच गति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण दोनों के लिए, उत्कर्ष से, अभी तिर्यंच के लिए अलग होगा, मनुष्यों के लिए अलग होगा, क्रमशः असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रूप अनंत काल, ये किसके लिए? तिर्यंच गति के लिए और मनुष्य गति के लिए पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम। हमने देखा 47 पूर्व कोटि और तीन पल्य, उसको पूर्व कोठी में वो लेना। अयोग केवली को छोड़कर शेष सब मनुष्य व मनुष्यनी मनुष्य गति नाम कर्म के उदीरक है। यानी मनुष्यों में कौन अनुदीरक है, तो अयोग केवली अनुदीरक है। अब 64 पेज पर आते हैं। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदीरणा काल, जैसे गति का उदय पहले समय से अंतिम समय तक है, वो उस जाति का भी उस भव में पहले समय से अंतिम समय तक है। तो एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदीरणा काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण, एकेंद्रिय की छोटे में छोटी आयु ली, भव लिया, और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रूप अनंत काल। ये समझ में आते ना, हमें ये मालूम होना चाहिए उस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है। द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण, क्योंकि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब में वो क्षुद्र भव तो होता है, और उत्कर्ष से संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। यानी द्विंद्रिय का अलग से संख्यात हजार, तीन्द्रिय का अलग से और चतुरिंद्रिय का अलग से। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण और उत्कर्षतः पूर्व कोटि पृथक्त से अधिक हजार सागरोपम है। हमने देखे था पंचेंद्रिय इन जनरल ने पर्याप्त और अपर्याप्त मिलकर 1000 सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक्त। अकेले पर्याप्तों को लेंगे तो 1000 सागर लेना पड़ेगा। यहाँ तो जाति नाम कर्म है, वो पर्याप्त के अपर्याप्त इससे कुछ मतलब नहीं है। ये याद आए ना, पहले हमने ये सारे काल याद किए थे अलग अलग पर्यायों में। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदीर्णा, नहीं उसमें हमने केवल इतना ही कहना, पूर्व कोटि पृथक उसके कितने हैं, उसकी वैल्यू ऐसे यथा योग्य जो है। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि उत्तर शरीर की विक्रिया कर मूल शरीर में प्रविष्ट होकर एक समय औदारिक शरीर की उदीर्णा करने के पश्चात द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर जो विग्रह को प्राप्त हुआ है, विग्रह किया उसने, तो विग्रह किया तो वहां तो औदारिक का उदय ही नहीं है, विग्रह गति में मोड़ वाले में उसके उपर्युक्त काल पाया जाता है। उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ऐसा क्यों लिखा? और दूसरी हाँ, मनुष्य और तीरें जो में रुजु गति से जाता रहा वो। वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि तीर्यंचो या मनुष्यों में एक समय उत्तर शरीर की विक्रिया करके द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के उक्त काल पाया जाता है। वैक्रिक शरीर नाम कर्म की उदीर्णा बताई वहां पर, यानी उसका उसकी सत्ता वाला को ही होता है, विक्रिया कर सकते शरीर औदारिक है, अपन औदारिक शरीर का परमाणु का ग्रहण, यानी उससे वो औदारिक शरीर के ही परमाणु से वो रचना होती है, परंतु वो उत्तर शरीर जुदा होता है, विक्रिया वाला। यानी वहां उस कर्म का उदय बताया जा रहा है। देखो देखो, उसकी सत्ता बिना तो उसकी विक्रिया नहीं होती है, एक तो बात है ना। इवन वायु कायिक हमने अग्नि कायिक में भी देखा था, वो तो उसके विक्रिया वैक्रिक शरीर नाम कर्म सत्ता में पड़ा है, उसी को विक्रिया हो सकती है, हमने देखा था। तब तक तो उसकी नहीं तो उद्वेल ना हो जाती है ना, इसलिए उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल साधिक 33 सागरोपम प्रमाण है। साधिक में ऐसा लेना पड़ेगा, यहाँ विक्रिया करते करते मरा, अंतर्मूर्त पहले उसने विक्रिया चालू की, मरकर देव में गया, ऐसा ही लेना पड़ेगा। अंतर्मूत विक्रिया करके मरकर देव में गया। क्या क्या?
अच्छा वो मनुष्य गति में था, उसने विक्रिया की।
देखो मनुष्य अभी नरक में जाने वाले के लिए भी, क्योंकि यहाँ क्या ले आया, वैक्रिक शरीर के उदीर्णा लेनी है, केवल यानी उदय उदीर्णा लेनी। वो तीर्यंच ने उदीर्णा की है, सॉरी तीर्यंच ने विक्रिया की और मरकर सातवें नरक में गया, ऐसा ले सकते हैं। या मनुष्य ने विक्रिया की, हाँ वो 33 सागर में ही उत्पन्न हुए देव, मुनिराज को ही लेना है नेचुरली, छठे गुण स्थान में ही लेना है उनको। और वो आहारक वाले को भी नहीं लेना है, विक्रिया वाले को लेना। हाँ सत्ता ने उसकी उदीर्णा बताई ना, उसका उदय उदीर्णा बता रहे, यानी वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय है उस समय, ऐसा लिया।
क्योंकि हमने वायु टाइप में जीवों की संख्या अल्प ली थी, क्योंकि काल हमने देखा था कि पंडित की संख्या से बात
है, वो बात अलग है, उसकी कहाँ यहाँ चर्चा है। यहाँ कौन 33 सागर कैसे घटित करना है वो लेना है यहाँ पर। आहारक शरीर नाम कर्म का उदीर्णा काल, जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है, क्योंकि आहार शरीर को उत्पन्न करने वाले जीव का अपर्याप्त काल में मरण संभव नहीं है, यानी पहले समय से उसकी उदीर्णा चालू हो गई तो उसका जो मिश्र काल है, आहारक मिश्र का योग, उतना अंतर्मूर्त तक तो उसको जीवित रहेगा ही रहे, बाद में मर सकता है, इसलिए उसको जघन्य भी अंतर्मूर्त बताया। वैसे महाबंध में यह इसके भी मरण स्वीकार है, आहारक मिश्र अवस्था में भी मरण स्वीकार किया है वहां पर, यहाँ पर नहीं किया है। जैसे इन तीन शरीरों के उदीर्णा काल की प्ररूपना की गई है, वैसे उनके अंगोपांगों के भी उदीर्णा काल की प्ररूपना करनी चाहिए, परंतु अंगोपांग के ये सर्वथा होगा अंगुल के असंख्यात भाग तक तो त्रस नहीं रहे ना, यहाँ लिखा है विशेष इतना है कि औदारिक शरीर अंगोपांग का उदीर्णा काल उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम प्रमाण है। एक इंद्रियों को छोड़कर लेना है, यानी यहाँ लगातार मनुष्य तीरेंच में रहने का लगातार जो काल लिया ना हमने,
हमने देखा था ना 900 सागर तक ले
सकते हैं। हाँ 900 सागर में औदारिक अंगोपांग का लगातार उदय रहेगा कि बीच में नरक और देव में भी जाना पड़ेगा?
नहीं नहीं, मैंने मनुष्य और तीरेंच में रहने का उत्कृष्ट काल हमने देखा
900 सागर, 100 सागर पृथक तो जो देखा था पुरुष वेद में रहने का, या ऐसा लिया था वो संगी
पंचेंद्रिय।
देखो आपका जो प्रश्न पूछ रहे हैं 2000 सागर में, अरे परंतु वो देव या नारकी के भव किए बिना कैसे हो गए इतने इतने सागर? देव या नारकी को बीच में लेना पड़ेगा ना, यहाँ उसकी बात नहीं। अवदारिक अंगोपांग किसके होगा? एक तो एक इंद्रिय को छोड़कर केवल त्रस लेना है, तो त्रस और त्रस पर्याप्त में रहने का काल अगर आपको 2000 सागर लेते हैं, परंतु यहाँ तो उसमें से देव नारकी के भव नहीं करना, तो लगातार तीरेंच और लगातार मनुष्य के भव करने पड़ेंगे। तो वो कितने हो गए, ये है उसका। औदारिक शरीर अंगोपांग का उदीर्णा काल उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक से भी तीन पल्लोपम प्रमाण इतना ही है। वही तो रुजु गति से जाना है और त्रसों में रहना है। वही तो औदारिक शरीर अंगोपांग तो मनुष्य और तिरियंचों के ही होगा। मनुष्य तिरियंच और तिरियंचों में वो एक इंद्रिय को नहीं लेना। क्योंकि तीन पल्ले के बाद तो जाएगा देव में और उसके पहले पूर्व कोटि पृथक लगातार तिरियंच और मनुष्यों के यानी त्रसों के। हाँ अभी उसमें द्विंद्रिय का भी ले सकते हैं ना अंगोपांग में। हाँ। अकेले वो 96 और 47 से नहीं लेना। हाँ संख्या तो हजार वर्ष पूर्व कोटि पृथक में तो आ जाएगी वो। जैसे पांच शरीरों के उदीर्णा काल की प्ररूपना की गई है वैसे ही उनके बंधन और संघातों के उदीर्णा काल की भी प्ररूपना करना चाहिए। क्योंकि शरीर में बंधन संघात तो उसी के साथ साथ होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा है ना सोचने के लिए। अलग अलग है ना, केवल उदय को नहीं उदीर्णा को भी कंसिडर करना है। समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है क्योंकि अविवक्षित संस्थान के साथ अच्छा उत्तर शरीर की विक्रिया करके छह संस्थान है तो उत्तर शरीर की विक्रिया की तो उसका संस्थान कोई अलग है। विवक्षित संस्थान वाले मूल शरीर में प्रविष्ट होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर हो सकते हैं ना।
आपने देव में तो
देव की विक्रिया नहीं, मनुष्य तीरंजों की बात चल रही है यहाँ पर। अरे पर नरक में कोई दूसरा शरीर नहीं बनाता है वो, अपृथक विक्रिया वहाँ पर, यहाँ पृथक विक्रिया होनी चाहिए। उत्तर शरीर बताए ना अलग, अन्य संस्थान वाला उत्तर शरीर बनाया और मूल में फिर आया। और ये समचतुर संस्थान में लिया जघन्य तो एक समय किसी में भी होगा परंतु उसका उत्कृष्ट किसका, समचतुर संस्थान का उत्कृष्ट उदीर्णा काल साधिक 163 सागरोपम प्रमाण है।
देव
करेंगे 163 में वो लेना है 66 देखो रुजु गति से जाता रहा और समित्व में रहा तो उसने वो बंध का होगा उसी का उदय होगा उसका। फिर से पढ़ती हूँ इसको देखो पेज नंबर 65 तीसरी लाइन एक समय के लिए।
हाँ।
एक समय किसी भी संस्थान का कैसा होगा वो विक्रिया शरीर की वो अन्य संस्थान वाला हो गया फिर मूल शरीर में आया और एक समय वो संस्थान में रहा और मर गया तो उसके उदीर्णा एक समय के लिए नहीं विक्रिया पूरी की फिर मूल शरीर में होकर द्वितीय समय में मरा ऐसा लिया। अब उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल साधिक 163 सागर प्रमाण है यानी वो 66 सागर 66 सागर 66 सागर यानी वो पहले 66 सागर के अंत में सम्यक मिथ्यात्व में आया फिर एक और 66 सागर सम्यक में रहा हाँ 132 में तो कुछ कम करण फिर 31 सागर में गया। किसमें साधिक 163 सागरूपम प्रमाण है, क्योंकि उसने जब सम्यक तो प्राप्त किया था ना उस भव में उसके समचतुर संस्थान था और उसी भव ने भव में उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो सम्यक तो के साथ आया तो समचतुर संस्थान में ही उत्पन्न हुआ ऐसा जीव लिया, इसलिए साधिक में चले जाएगा। कुंडक संस्थान को छोड़कर शेष चार संस्थानों का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व मात्र है, केवल पूर्व कोटि पृथक्त्व लिया क्योंकि यहाँ वो वहां समय दृष्टि को लिया था 163 तक, क्योंकि कर्म भूमिज पंचेन्द्रिय तीर्यंच और मनुष्यों को छोड़कर अन्यत्र शेष संस्थानों की संभावना नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, हुंडक संस्थान का कहाँ है, नारकियों के भी है, एक इंद्रियों को भी सारे को हुंडक संस्थान ही है, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिय चतुर इंद्रिय तक। अब जो बीच वाले जो चार जो है ना कर्म भूमिज पंचेन्द्रिय तीर्यंच और मनुष्यों में ही होते हैं, भूभूमि में भी वो समचतुर संस्थान होगा, इसलिए चार संस्थान बीच वाले जहाँ चार है ना उसकी बात है कि जघन्य से एक समय और वो भी जो विक्रिया वाला जो उन्होंने ऊपर देखा अविवक्षित संस्थान में गया और फिर विवक्षित में आ गया और उत्कर्ष से पूर्व कोटि है पृथक पूर्व कोटि पृथक, क्योंकि वो कर्म भूमि पंचेन्द्रिय तीरिंच और मनुष्यों में वो पाए जाते चार संस्थान बीच वाले। कुंडक संस्थान नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात विभाग है। देखो भले हुंडक संस्थान उसका असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक चल सकता है परंतु ये रुजु गति से जाना चाहिए क्योंकि विग्रह वाली गति जो है मोड़ वाली उसमें संस्थान का उदय उदीर्णा नहीं है, क्योंकि विग्रह गति के बिना परिभ्रमण करने वाले एकेंद्रिय विकलेंद्रियों में अन्य संस्थान की संभावना नहीं है। अब कहते अनंत काल की प्ररूपणा क्यों नहीं की, नहीं क्योंकि विग्रह गति में रहने वाले जीवों के विग्रह गति ने मोड़ वाली संस्थान का उदय संभव नहीं है। शंका, विग्रह गति में संस्थान के अभाव में जीव का अभाव क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि जीव है तो उसका कोई ना कोई आकार तो अवश्य होना चाहिए। हाँ कुंडक संस्थान में सब ले सकते हैं, नारकी तीर्यंच मनुष्य सब, क्योंकि मनुष्यों में तो छह संस्थान होते हैं। हाँ देव में समचतुरस्र होता है इसलिए वहां वो 66 सागर की बात घटित हुई थी, दो बार 66 और फिर 31 सागर। देखो यहाँ कहता कि विग्रह गति में संस्थान का अभाव है तो जीव का भी अभाव होना चाहिए, तो कहते नहीं क्योंकि वहां आनुपूर्वी के द्वारा रचे गए संस्थान में अवस्थित जीव के अभाव का विरोध है, यानी वहां जो जीवों का संस्थान है वो आनुपूर्वी से वो रहता है। अब यही रुकेंगे हम। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई